जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद दिवान गृह सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदरी ललिता विशाखा देवी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री कृष्ण गौर निताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की आगत वैष्णव भक्त वृंद की समागत वैष्णव भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल द बॉडीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विहीशः कलो नष्ट द्रशामेश पुराण अर्को अधुना उदितः ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास आना श्लोक संख्या 8 मेरे पीछे दोहराइए वामे बाई उरो झांग पर अधिश्रित्य रख कर दक्षिण अंग्री सरोरुहाम दाहिने चरण कमल को अपाश्रित टीका कर अर्भक छोटा अस्वस्थम बरगद का वृक्ष अकृशम प्रसन्न त्यक्त छोड़े हुए पीपलाम घरेलू आराम वाम उरावधिश्रित दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भका स्वस्थम कृशम त्यक्त पिपलम अकृशम त्यक्त पिपलम वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकासस्थम अकृशम त्यक्त पिपलम वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भका स्वस्थम अकृशम त्यक्त पिपल्लम
वामोरावधिश्रित्य
माताए भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में अतीव प्रसन्न दिख रहे थे। मेरे पीछे दोहराइए, भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में अतीव प्रसन्न दिख रहे थे। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अस्वस्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। भगवान के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं जिनकी संख्या 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल है, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई है। चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पिपलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंदमय रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणांग्रि सरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वस्थम् अक्रूशम् त्यक्त पीपलम्। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाहीं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपान त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में अतीव प्रसन्न दिख रहे थे। सुवाम उरव अधिश्रित्य दक्षिणिन अंग्री सरोरुहम, अपना बाया पांव अपने दक्षिण पांव दाहिने पांव को कहाँ रखा, जांघ पे, बाई जांघ पे, तो ये मुद्रा है। तो वैसे भगवान बरगद पीपल के वृक्ष के आगे, बरगद वृक्ष पीछे था बैठे, और वो ये ब्रह्मांड छोड़ने वाले थे, इसलिए शोक मग्न नहीं थे। लिखा गया कि वो प्रसन्न मुद्रा में, अक्रुशम अक्रुशम प्रसन्न मुद्रा में अतीव प्रसन्न दिख रहे थे। तो सामान्य आम मनुष्य या प्राणी जब ये भौतिक संसार छोड़ता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत दुख। कहते हैं भागवत में कहा है कि मरण काल जीव 1000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना दुख अनुभव करता है। और यहाँ भगवान प्रसन्न है, तो कारण क्या है कि भगवान अपनी सृष्टि छोड़ नहीं रहे, और अगर छोड़े भी, ये ब्रह्मांड छोड़े भी, तो उनमें उसको आसक्ति नहीं है, उन्हें कुछ भी आसक्ति नहीं है, इसलिए प्रसन्न मुद्रा। मेरा कुछ मैं गंवाने वाला नहीं हूँ, मेरा कुछ छूटने वाला नहीं है। तो भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपना बाई जांघ पे दक्षिण पांव लगा के सुंदर मुद्रा में बरगद के पेड़ के आगे बैठे हुए हैं। बरगद का पेड़ का अर्थ यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती करते हैं कि वो उनका क्षय नहीं होता, और बरगद का पेड़ ये भौतिक शक्तियाँ का प्रतीक है, इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो भगवान की निजी भौतिक शक्ति है, इन्फीरियर एनर्जी ऑफ कृष्ण, भौतिक शक्ति उनका प्रतीक है बरगद का पेड़। और त्यक्त पीपलम का अर्थ है कि छोटे से ब्रह्मांड को वो छोड़ के जा रहे हैं, छोटा बरगद का पेड़ मतलब छोटा ब्रह्मांड छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान अपनी लीलाएं क्रियाएं इस भौतिक जगत में संपन्न कर रहे हैं, और दूसरे ब्रह्मांड में या दूसरी जगह या यहाँ अपने निजी धाम में वापस लौटते हैं, तो वहाँ वो अपने शरीर के साथ, वपु के साथ, या तो ऐसा कहेंगे वो भी भूल है, भगवान का वपु और भगवान अलग नहीं है, भगवान का जीव आत्मा और भगवान का शरीर अलग नहीं है, भगवान का शरीर ही आत्मा है और भगवान का आत्मा ही शरीर है, कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए भगवान अपना निजी शरीर के साथ जाते हैं, तो ये भी कहना भूल है, शरीर और भगवान एक ही है। तो ये हम अलग क्यों बोलते हैं यहाँ ये लेक्चर में, क्योंकि प्रवचन में, क्योंकि कई लोग भूल करते हैं कि जो हंटर था पारधी व्याध्र, तो उन्हें भगवान को तीर मारा तो भगवान मर गए, लेकिन हम देखते हैं कि कोई मनुष्य के पाँव में आप तीर मारोगे तो मनुष्य नहीं मरता, मनुष्य नहीं मरेगा, तो भगवान कैसे मरेंगे, बुद्धि की बात है। तो पाँव में तीर मारना ये निमित्त है, क्या निमित्त है कि ब्राह्मण विश्वामित्र वगैरह ब्राह्मण गण ने श्राप दिया था, वो श्राप भी भगवान की ही रचना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे सुंदर ब्राह्मण, उच्च कक्षा के ब्राह्मण जो पिंडारक क्षेत्र में यज्ञ करके वहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ से जाम्बवान, जाम्बवती के पुत्र सांब और दूसरे कहीं श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र सब खेल रहे थे, तो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मजाक मस्करी की ये ब्राह्मणों की, विश्वामित्र वगैरह की, तो उन्होंने मजाक किया तो श्राप दिया कि जो भी जन्मेगा मुशल जन्मेगा और ये मुशल ही आपके वंश का नाश का निमित्त बनेगा। तो ये भी भगवान की ही लीला है, भगवान चाहते थे कि ये यदुवंश पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली है और ये शक्तिशाली मेरा वंश जो है उनको भी वापस पहले मेरे से पहले भेजना होगा। तो ये भी भगवान की ही लीला है, सब देवी देवताएं उनके वंश में अवतरित हुए थे, ऋषि मुनि अवतरित हुए थे, तो सबको वापस पहले भेजना होगा। तो निमित्त, कुछ निमित्त एक साथ भेजना है तो कुछ निमित्त करना होगा, और यदु वंश को कोई मार नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, तो इसलिए आपस आपस में ही शक्ति का उपयोग हो तभी हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मूवमेंट भी अगर कोई हिला नहीं सकता, लेकिन अगर मूवमेंट हमारी ये संस्था अगर इनका कुछ नाश हो सकता है तो अंदर अंदर झगड़ा से इनका नाश होगा। इसलिए हमें गंभीरता से लेना होगा कि छोटे से छोटा भक्त के साथ कुछ भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम में से आया, कुछ हंगामा मच रहा था, तो ये गलत है। कौन गलत है? जो ब्रह्मचारी हंगामा मचा रहे हैं, जो डिस्टर्ब कर रहा है दूसरे भक्तों को, तो वो गलत है। उनको समझना चाहिए कि क्यों सब भक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे से, उसका मतलब कि मैं ही गलत हूँ। हालांकि अंदरों अंदर झगड़ा ये संस्था का मूल निकंदन, संस्था को नष्ट करने वाली चीज है। बाहर से कोई नहीं कर सकता, क्यों? कि श्री कृष्ण भगवान ने स्थापित की हुई संस्था है, किसी अन्य ने नहीं। प्रभुपाद भी श्री कृष्ण से निर्मित, प्रतिपादित, ट्रेन किए हुए सिद्ध पुरुष हैं। और ये प्रभुपाद जी श्री कृष्ण ने स्थापित की हुई संस्था को कोई नहीं हिला सकता, लेकिन अंदर और अंदर बहुत चल रहा है, छोटे स्केल पर या बड़े स्केल पर। लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन यदुवंश का नाश अंदर अंदर से हुआ, तो हम सब यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के भक्त, ये रियल यदुवंशी हैं, कृष्ण के अनुयायी, अनुगामी। तो श्री कृष्ण का वंश, वो भी निर्मित ब्राह्मणों को भगवान ने बनाया, गो ब्राह्मण हिताय च, ऐसे भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं ब्राह्मण, और उनके वंश को कैसे, और छोटी सी बात में कैसे श्राप दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भगवान की लीला है, करामत, भगवान की ही लीला है, ये हो नहीं सकता। और वो भी घीस घीस के मुसल को, घीस के उग्रसेन ने घीस घीस के समुद्र में फेंक दिया, फिर भी भगवान निमित्त बनाना चाहते थे, इसलिए वो सब रजकण किनारे पे आए और घास में वो गए कर्ण, और घास के लॉन्ग ब्लेड्स, लंबा पत्ता, बहुत तरवाल के मुताबिक शार्प, और उस वो पत्तों से एक दूसरे को मारने लगे। जस्ट सोचो कि घास के पत्ते से कोई मरता है, कितना भी तीक्ष्ण हो, लेकिन भगवान की ये लीला है। और भगवान भी पांव में अगर तीर मारा गया तो मनुष्य नहीं मरता, तो भगवान कैसे मरेंगे, ये भी लीला है। और भागवत में लिखा है कि भगवान अपने निजी शरीर के साथ, निजी शरीर का अर्थ ये नहीं कि शरीर उनका अलग था, शरीर और वो एक ही है, लेकिन फिर भी लिखा गया आम जनता के लिए कि कृष्ण स्वधाम उपगते काष्ठाम, कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने स्वधाम में गए, ऐसा लिखा है, कृष्ण स्वधाम उपगते, और निजी वपु के साथ ऐसा प्रयोग किया गया, अपने शरीर के साथ ऐसा प्रयोग तीन बार भागवत में आया है कि अपने शरीर साथ, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के गए, खुला लिखा है व्यासदेव ने शरीर के साथ। लेकिन मायावादी लोग ये समझेंगे नहीं, क्योंकि वो कृष्ण अपराधी होते हैं, कृष्ण मर गए, कृष्ण का शरीर माया का था, माया का शरीर का अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, जैसे हमारा शरीर होता है माया का भौतिक शरीर, उसी तरह कृष्ण का शरीर भी माया का था, इसलिए उन लोगों को हम बोलते हैं मायावादी। मायावादी का की परिभाषा है कि जो श्री कृष्ण राम नारायण विष्णु के शरीर को माया का शरीर समझते हैं, उनकी लीला को माया का, माया की माया लीला समझते हैं, उनकी लीला दिव्य लीला है, उनका नाम रूप गुण धाम पराफनेलिया परिकर पार्षद साधन सामग्री सब दिव्य है। लेकिन मायावादी क्या समझते हैं कि ये सब माया है, हम करते हैं वो कार्य और कृष्णा करते हैं वो लीला, ऐसा नहीं समझते हैं, कृष्णा भी कार्य करते हैं, कृष्ण को कर्म के बंधन। मायावादी कहते हैं रामचंद्र ने छुपे हुए पेड़ से छुप गए पेड़ के पीछे और छुपे हुए वाली को मारा, तो उनका कर्म उनको लगा, इसलिए तो ये कर्म नहीं लगता भगवान को, भगवान कैन डू नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग, बक स्टॉप्स एट किंग कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता, अगर गलत भी हो फिर भी वो गलत कार्य नहीं है, क्योंकि वो राजा है, राजा मार भी सकता है और राजा पुरस्कार भी दे सकता है, कुछ भी करे राजा गलत नहीं कर सकता। इसी तरह कृष्ण भी, भगवान भी, राम भी गलत कार्य नहीं कर सकते, वो जो भी कार्य करे वो दिव्य है, वो कार्य हमें दिव्य नहीं लगता, उनका अर्थ है कि हमारी आंखों में कुछ तकलीफ है देखने में, हमारी सोच समझ में तकलीफ है, भगवान दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप भी दिव्य है, इसलिए उनको लीला कहते हैं, एक कार्य से अनेक चीजें हासिल करते हैं भगवान, तो भगवान के कार्यकलाप में कोई गलती नहीं है, उनको कर्मों की गति नहीं है, ए किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो मायावादी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के कर्मों से उन्हें ये सब, उनको ये सब हुआ, शरीर छोड़ा, मारे गए तीर से मारे गए वगैरह वगैरह, तो भगवान ये नहीं मारे गए, भगवान ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट, ब्राह्मण का श्राप का वो रिस्पेक्ट करना चाहते थे भगवान, और खुद जाना भी चाहते थे, इसलिए ब्राह्मणों से श्राप लिया, ये भगवान की ही लीला है, सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट, भगवान की अरेंजमेंट है सब, ऐसा नहीं है कि ये सब ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों का श्राप भगवान हटा सक, ब्राह्मणों को पहले तो ब्राह्मण भगवान के कुल को और भगवान को श्राप देंगे ही नहीं, ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं और भगवान भी ब्राह्मणों के हितेशु है, गो ब्राह्मण हिताय, तो ये सब लीलाएं हैं भगवान की। तो पिंडारक क्षेत्र में ये लीलाएं हुई, तो यहाँ भागवत में कहा गया है कि भगवान के सब जो दूसरे जो यादव या कुछ थे, तो उनकी पत्नियां अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करती हैं। लेकिन रुक्मिणी को ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान के साथ, भगवान के शव के साथ वो चिता में प्रवेश करती हैं। रुक्मिण्याद्या तदात्मिका, रुक्मिणी तदात्मिका लिखा है, तद कृष्ण आत्मिका, उनमें उनकी चेतना थी रुक्मिणी तद आत्मिका। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ समझा जाता है कि यहाँ पर वर्णित शोकमय दृश्य भगवान की माया शक्ति का प्रदर्शन है और पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को अंतिम नाटकीय रूप प्रदान करता है। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने आदि शरीर के साथ अपने नित्य धाम में लौट गए और उन्हीं के साथ उनके नित्य पार्षद भी लौट गए। भगवान की लीलाओं का यह अंतिम हृदय विदारक दृश्य भगवान की अंतरंगा शक्ति का खेल है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का खेल है, जिससे भगवान की व्यक्त लीलाओं का पूर्ण नाटकीय अंत हो जाता है। पूर्ण नाटकीय लीला है ये, भगवान का नाटक है, लीला है अंतर्ध्यान होना। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अपने निजी शरीर के साथ स्वधाम गए। तो निजी शरीर का अर्थ भी गलत है, शरीर और भगवान एक ही है, आत्मा एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए निजी शरीर का उपयोग करते हैं शब्द का। निजी शरीर, कृष्ण का शरीर और कृष्ण नाम, कृष्ण आत्मा, कृष्ण परमात्मा अद्वैत एब्सोल्यूट चीज है, सच्चिदानंद। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के साथ अपने धाम में गए, तो रुक्मिणी जी चिता में भगवान के साथ प्रविष्ट हुई ऐसा नहीं लिखा, लेकिन दूसरी रानी, दूसरी क्वीन या दूसरे पत्नियों के लिए ये लिखा है। भगवान की लीलाएं दिव्य लीलाएं हैं ये भौतिक जगत को छोड़ने की। तो यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य एक लोक में उदय होता है तो दूसरे लोक में उनका अस्त होता है, लेकिन सूर्य का अस्त नहीं है, सूर्यास्त है। उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य मर गया और दूसरे लोक में सूर्य का जन्म हुआ, ऐसा नहीं होता। हर रोज सूर्य उगता है और डूबता है, तो सूर्य का डूबना और उगना सूर्यास्त, सूर्योदय, लेकिन सूर्य का क्षय नहीं है, वही सूर्य वापस आता है। तो इसी तरह भगवान अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग लोक, निजी लोक, गोलोक वृंदावन वगैरह जाते हैं, तो उनका शरीर छोड़ते नहीं, वो ही खुद क्षय नहीं होता उनका। दूसरी जगह लिखा है कि भगवान जब यहाँ से स्वधाम गए तो स्वर्ग होते हुए गए, तो स्वर्ग में स्वर्ग के सब देवी देवताओं ने उनका स्वागत किया। तो अगर वो शरीर के साथ नहीं थे तो कैसे स्वागत हुआ? शरीर के साथ होंगे तब तो देवताओं ने उनका दर्शन हुआ। तो उनका आत्मा और वो उनका शरीर अलग नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि उनके शरीर के साथ गए इसीलिए देवी देवताओं ने उसका स्वागत किया, उनको हार, उनके वाजिंत्रों से उनका स्वागत किया वगैरह वगैरह। तो भगवान स्वधाम गए तो अपने शरीर के साथ गए, ऐसा भागवत में बार बार कथा आती है। तो हमें इसे समझना होगा। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने आदि शरीर के साथ अपने नित्य धाम में लौट गए। आदि शरीर के साथ, भगवान का शरीर आदि है, आदि का अर्थ है कि जिसका अंत नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं, आदि एटर्नल सनातन शरीर। तो सनातन का शरीर का अर्थ है उनका क्षय नहीं होता। तो ये भगवान की अंतिम लीला का वर्णन यहाँ किया गया है कि भगवान पिंडारक क्षेत्र में अंतर ध्यान होते, पिंडारक क्षेत्र में पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे भगवान बैठे हैं। मंदिर में जाओगे आप तो वहाँ आपको दर्शन होंगे। और जो हंटर हैं पारदी, या जिसने बाण चलाया और उनके पाँव में लगाया, तो वो भी हिरण समझ के भगवान की आभा प्रभा से उनको लगा कि हिरण की दो आंखें चमक रही हैं। तो रात का शाम का समय था, रात का, तो उनने हंटर ने शिकारी ने बाण चलाया, तो बाण चलाने वाली जगह भी समुद्र के किनारे पे हैं। और वहाँ से उनने, वहाँ बरगद का वृक्ष था, वहाँ भगवान बैठे थे, वहाँ बाण चलाया, तो वो भी हैं। और बलराम की गुफा, जहाँ बलराम शेष के रूप में, नाग के रूप में पृथ्वी में चले गए, तो वो भी हैं, सुंदर जगह। और पिंडारक क्षेत्र, वहाँ कई कई यदुवंशियों ने अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए पिंड दान, पिंड क्रिया की, तो वहाँ पिंड दान करने का भी महात्म्य है। वहाँ सरस्वती नदी है, उसके किनारे पे भगवान अंतर ध्यान हुए, सरस्वती नदी गुप्त है। और वहाँ समुद्र का सुंदर किनारा है, सोमनाथ मंदिर, वहाँ वीरावल पिंडारक क्षेत्र, तो सोमनाथ जी का सुंदर मंदिर भी है, सोम के नाथ शंकर, आत्मभू स्वयंभू मूर्ति शंकर, जो स्वयंभू लिंग 12 लिंगों में से हैं, तो वो भी है वहाँ पिंडारक क्षेत्र में। सुंदर यात्रा का स्थल है जमुन और समुद्र का किनारा। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। कोई सवाल? यस। चिता में गई लेकिन भगवान के शरीर के साथ नहीं।
बाकी सभी रानियां मतलब उनका तत्व तो एक ही है ना, वो सभी राधा रानी की विस्तार हैं।
उनकी रानियां नहीं, अलग अलग यदु वंश की रानियां। तो यदु अपने अपने पति की चिता में प्रविष्ट हुई, उनकी पत्नियां, भगवान की बात नहीं है। उनकी ट्विग्स, उनकी ट्विग्स से अभी तक वही ट्विग्स से बरगद का वृक्ष वही है, मतलब उनकी ट्विग्स से उनको यू नो चलता है वंश, उनका बरगद के पेड़ का वंश। और कैसा ट्विग्स का अर्थ क्या करेंगे? ट्विग्स डालियां टहनियां से उनका चलता रहता है। और कोई सवाल? नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। तो अर्जुन अपने सर्वप्रिय मित्र भगवान कृष्ण के विच्छोह से अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान के उन दिव्य शब्दों का स्मरण करके, जिन्हें उन्होंने उनसे गीत रूप में गाया था, अपने को सांत्वना दी। श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्जुन ने गीता के निम्नलिखित श्लोकों का स्मरण किया। नाहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। भगवद्गीता 7:25। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी शाश्वत सृजनात्मक शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः मोहित हुआ जगत